तो हम सबको और जाति की हो और सेम भी किसी और जाति का हो, प्रीत किसी और जाति की हो और प्रीतम किसी और जाति का हो, ये कभी हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। जब ये नहीं हो सकता तब ये जो स्थूल जो आपका जीवन है, ये जो स्थूल आपका जीवन है, वो जीवन क्या हो जाता है कि वो जीवन एक केवल साधन का क्षेत्र रह जाता है। कैसे? एक विचार कीजिए कि जब आप सेवक अपने को मान लेते हैं, जब आप सेवक अपने को मान लेते हैं तो आपकी प्रत्येक प्रवृत्ति में सेवा का रंग आ जाता है, सेवा का प्रभाव आ जाता है। तो जब सेवा का प्रभाव आ जाता है तो प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों के हित में होने लगती है, दूसरों के हित में, अपने सुख में नहीं। और जब तक हमारी प्रवृत्तियों में सेवा का रस नहीं आता तब तक प्रत्येक प्रवृत्ति अपने सुख में होती है, और जहां अपने सुख में प्रवृत्ति हुई मां रसदाता का पद नाश हुआ, मां रसदाता का पद नाश हुआ और रस के भोगता हो गए, और जो भोगता होगा भाई उसकी शक्ति का तो ह्रास होगा ही, उसमें तो पराधीनता आएगी ही, उसमें तो जड़ता रहेगी ही। इसलिए भाई आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो अस्तित्व है, वो क्या है? सेवा है, प्रीत है। सेवा किस काल में? प्रवृत्ति काल में। प्रीत किस काल में? निवृत्ति काल में। अब आप कहेंगे कि भाई सेव्य और प्रीतम क्या इनमें भी कोई भेद है? कि भाई इनमें कोई भेद नहीं है, एक बड़ा भारी भेद है, और वो भेद यह है कि जब हमारा प्रियतम सेव्य होता है तब वो व्यक्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है, उसका प्रादुर्भाव हो जाता है। वही प्रियतम सेव्य जब होगा तब व्यक्त रूप में होगा, प्रकट रूप में होगा। जिसको किसी ने जगत के नाम से कहा महाराज, किसी ने माया मात्र के नाम से कहा, किसी ने प्रतीति मात्र से कहा, और किसी ने लीला शब्द से इसका वर्णन किया। तो भाई हमारा सेव्य क्या है? वही प्रीतम जो कि छिपा हुआ है। किसमें? जरा ध्यान दीजिए, प्रीतम किसमें छिपा हुआ है? प्रीत में, बाहर नहीं, प्रियतम प्रीत में छिपा है। तो प्रीत में छिपा हुआ प्रियतम जब प्रकट होता है तब प्रीत सेवा का रूप धारण करती है, प्रीत सेवा का रूप धारण करती है, और सेवा होकर सेव्य को रस देती है। और जब प्रियतम अपने प्रकट रूप को अपने में विलीन करता है तब सेवा प्रीत होती है, और प्रीत होकर प्रीतम को रस देती है। अब भाई सच बात तो यह है कि जब प्रीत होकर प्रीतम को रस देती है सेवा, तब प्रीतम जो है उस प्रीत का भोगी होता है। जैसे सेव्य सेवा का भोगी है, ऐसे ही प्रीतम प्रीत का भोगी है। जब प्रीतम प्रीत का भोगी होता है तब ये पता चलाना बड़ा कठिन हो जाते हैं, और कौन प्रीतम है, कौन प्रीत है, कौन प्रीतम है। तो जहाँ प्रीत और प्रीतम के भेद का पता नहीं चलता वहीं लोग चुप होते हैं, वहीं लोग चुप होते हैं, और चुप होकर वो रस कि जिसमें कभी क्षति नहीं, और वो रस का भोगता कि जिसकी शक्ति का कभी ह्रास नहीं, तो दशा क्या होती है कि कल्पना करो कि किसी को ऐसी प्यास लगी हो जो कभी बुझे नहीं, और ऐसा जल मिल जाए कि जो कभी घटे नहीं, और ऐसा पेट हो जो कभी भरे नहीं, तब आप क्या कहेंगे? तब आपको कहना पड़ेगा कि प्रत्येक घूंट पर एक नया रस है। क्यों नया रस है? कि प्यास बुझती नहीं है, जल घटता नहीं, पेट भरता नहीं। यही वास्तव में अगाध रस है, अनंत रस है, नित्य रस है, और वो रस मानव मात्र को प्राप्त हो सकता है। कब हो सकता है? कि इसी बात को यदि हम लोग अपनी बोलचाल की सीधी सादी भाषा में कहें तो कहेंगे भैया अपने अधिकार का त्याग करो। बोले इससे क्या होगा? कि इससे होगा ये कि आप साधक की सूची में आपका नाम लिख जाएगा। बोले हम तो ये नहीं कर सकते, हम तो ये नहीं कर सकते। अगर आप ये नहीं कर सकते तो सरकार साधक तो नहीं हो सकते, चाहे आप ब्रह्म भले ही हो जाएं, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं कि आप ब्रह्म नहीं है, सचमुच आप ब्रह्म है, पर साधक नहीं हो सकते। और मानव सेवा संघ का जो दृष्टिकोण है वो साधन द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का है। आप कहेंगे ऐसा क्यों कि भाई देखो ब्रह्म में तो साधन का प्रश्न हो नहीं सकता, जगत में साधन का प्रश्न हो नहीं सकता। सोचिए जगत में कोई साधन का प्रश्न होता है, ब्रह्म में कोई साधन का प्रश्न होता है? साधन का प्रश्न साधक में होता है और साधक होता है मानव। ध्यान दीजिए, साधक होता है मानव, कोई और साधक बनने नहीं आता। तो हम और आप मानव सेवा संघ के दृष्टिकोण से जब देखते हैं तो हम सबको साधक होना है, और साधक होने के लिए सबसे पहली बात हमें और आपको स्वीकार ही करनी पड़ेगी, और वो ये बात कि भाई हमें किसी से कुछ लेना नहीं है। क्यों? लेने के लिए हमारा जीवन होता तो मानव जीवन नहीं होता महाराज, तो क्या होता? बोले पशु जीवन होता। क्योंकि पशु जीवन में लेने की बात है। और आप कहते हैं कि पशुओं से तो बहुत लाभ होता है, वृक्षों से तो बहुत लाभ होता है, तो वृक्षों से जो बहुत लाभ होता है वो तो लाभ लेने वाला ले लेता है, वो बेचारा देता थोड़ी है। वो थोड़ी कहता है कि हमने इसलिए हो गए हैं कि हम तुमको छाया देंगे, कि हम तुमको फल देंगे, कि सूखने पर लकड़ी देंगे। ऐसा बेचारा अगर वृक्ष कहता है तब तो ये मानना चाहिए कि वो सृष्टि नहीं है, वो वृक्ष नहीं है, वो तो प्रभु है। क्योंकि जो नहीं लेता और देता है ये प्रभु का स्वभाव। ध्यान दीजिए, जो देता है और लेता नहीं वो प्रभु का स्वभाव, और जो देता है जो देता है और लेता है ये दोनों बातें हैं, ये असाधक का स्वभाव। और जो देने के लिए तत्पर है और लेना छोड़ता है ये साधक का स्वभाव, जो केवल लेता है ये जड़ता है, जड़ता और कुछ नहीं है। चाहे वो जड़ता वृक्ष में आरोप करें, चाहे वो जड़ता पशु पक्षी में आरोप करें, और चाहे अपने व्यक्तिगत जीवन में आरोप करें, जो केवल लेता ही लेता है उसी का नाम जड़ है, जड़ और किसी का नाम नहीं। चाहे कोई मनुष्य की आकृति में हो और कहे भाई हमारा जीवन तो लेने ही के लिए है, तो भाई जड़ की इससे ऊंची और कोई परिभाषा नहीं है। जड़ वो जो केवल लेता ही लेता है, और जो लेता देता है उसी को जड़ सिद्ध ग्रंथि कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो कभी लेने की सोचता है और कभी देने की है, कभी लेने की और कभी देने की, यही जड़ सिद्ध ग्रंथि है। और जो केवल देता है उस श्रेणी में दो ही का नाम आता है, या तो प्रेमी का या प्रेमास्पद का, और किसी का नहीं। इसलिए भाई अब ये विचार ये करना है कि क्या आप और हम साधक नहीं हैं? यदि हम और आप साधक हैं तो हमारे आपके जीवन में जो लेने और देने दोनों की जो बात है, कभी लेने की सोचते हैं और कभी देने की सोचते हैं, उनमें से एक बात निकाल देनी पड़ेगी। कौन सी? लेने की बात निकाल देनी पड़ेगी। तो जब हम अपने जीवन में से लेने की बात निकाल देते हैं, सच पूछिए उसी समय जड़ता से मुक्त होते हैं। ध्यान दीजिए, जिसे कुछ नहीं चाहिए उसका शरीर से संबंध रह सकता है? विचार तो करो। जिसे कुछ नहीं चाहिए उसका शरीर से संबंध नहीं रह सकता, क्योंकि शरीर से तद्रूपता कामना पूर्ति के लिए अपेक्षित है, कामना निवृत्ति के लिए नहीं। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया भावावेश में आकर, अरे भाई शरीर जो है ये साधन का क्षेत्र है, ऐसा प्राय कहते हैं ना। तो वो शरीर जो साधन का क्षेत्र है, वो इसी अंश में किस मानव जीवन में आप लेना बंद कर सकते हैं। तो भाई जब हम कुछ नहीं लेना चाहते हैं तब शरीर से संबंध नहीं रहता, और जब शरीर से संबंध नहीं रहता तब योग हो जाता है। देखिए, योग शरीर के नाश करने से नहीं होता, तो ध्यान दीजिए, और योग शरीर को बनाए रखने से भी नहीं होता। आप कितना ही पुष्ट शरीर बना लीजिए उससे कोई योग हो जाए कोई जरूरी नहीं है, और आप शरीर का नाश कर दीजिए, उससे कोई योग हो जाए, ये संभव नहीं है। योग कब होता है कि जब आपका शरीर से संबंध नहीं रहता। और शरीर से संबंध तोड़ने के दो उपाय, बड़े सुगम दो उपाय। एक उपाय तो यह है कि भाई हमें किसी से कुछ लेना नहीं है, अपने अधिकार का जो त्याग है ये भी शरीर से संबंध तोड़ने का उपाय है। और दूसरा निज विवेक का आदर। आप कहें कैसे कि भाई पता तो लगाओ कि हम क्या हैं, हम क्या हैं। ये जब पता लगाओगे तो अगर आपने मान लिया कि हम जीव हैं तो ये आपका ज्ञान नहीं है, ये आपका विश्वास हो सकता है। अगर आपने ये मान लिया कि हम ब्रह्म हैं तो ये भी आपका ज्ञान नहीं हो सकता, विश्वास हो सकता है। इसका कोई भाई बहन ये न समझ बैठे कि मैं किसी के विश्वास को झूठ मानता हूं। मैं विश्वास को झूठ नहीं मानता, किंतु विश्वास को विश्वास मानता हूं, ज्ञान नहीं मानता। तो इतना अंतर है। मैं ये नहीं मानता कि जो अपने को जीव मानता है वो उसका विश्वास झूठ है, या जो अपने को ब्रह्म मानता है उसका विश्वास झूठ है, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन उसको ज्ञान नहीं मानता, उसको विश्वास मानता हूं। तो ज्ञान आपको क्या है भाई? आपको ज्ञान क्या है? आपको केवल इतना ज्ञान है कि यह का नाम मैं नहीं है। तो ध्यान दीजिए, यह का नाम मैं नहीं है, स्वीकृति का नाम मैं नहीं है। वही स्वीकृति का क्या है कि स्वीकृति जो साधन रूप स्वीकृति है वो तो कर्तव्य की प्रतीक है, और जो असाधन रूप स्वीकृति है वो अकर्तव्य की प्रतीक है। स्वीकृति के दो भाग होते हैं ना, साधन रूप स्वीकृति, कर्तव्य की प्रतीक। और कर्तव्य मालूम क्या है? कर्तव्य क्या है? दूसरे का अधिकार। कर्तव्य का अर्थ ही है दूसरे का अधिकार। और अकर्तव्य क्या है कि अधिकार लालसा, अधिकार लालसा, अधिकार लालसा अकर्तव्य का वो बीज है जिसमें से समस्त अकर्तव्य उत्पन्न होते हैं। लेकिन आज आज अधिकार मांगने को विकास का साधन बताया जाता है, है? अगर अधिकार मांगना विकास का साधन है तो हिरास क्या है? हिरास क्या है? यदि अधिकार मांगने का नाम चेतना है तो जड़ता क्या है? यदि अधिकार मांगने का नाम पूर्णता है तो अपूर्णता क्या है? ध्यान दीजिए। तो कहने का मेरा तात्पर्य था कि भाई ज्ञान आपको इसी बात का होता है। किस बात का? कि पहला आपका ज्ञान यह है कि यह का नाम मैं नहीं है, दूसरा आपका ज्ञान यह है कि स्वीकृति का नाम मैं नहीं है, न स्वीकृति का नाम मैं है न यह का नाम मैं है। तो ये तो हुआ आपका ज्ञान, ये तो हुआ आपका ज्ञान। इस ज्ञान का प्रभाव क्या होगा? इस ज्ञान का प्रभाव होगा अधिकार का त्याग। इस ज्ञान का प्रभाव, ये जो अधिकार त्याग की बात मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये बिना दार्शनिक भित्ति के नहीं करता हूँ। ये दार्शनिक भित्ति है इस बात की कि जब आप यह का नाम मैं नहीं है तो बताओ आपका क्या अधिकार है। किसी बहन से पूछो, किसी भाई से पूछो कि शरीर से अलग जानकर, शरीर से अलग जानकर आपको साड़ी चाहिए, आपको जेवर चाहिए, आपको पुत्र चाहिए, आपको पति चाहिए, आपको बंधु चाहिए, अगर ईमानदार बहने तो नहीं चाहिए। किसी पुरुष से पूछो कि भाई शरीर से अलग जानकर आपको पत्नी चाहिए, भगिनी चाहिए, पुत्री चाहिए, अगर ईमानदार पुरुष है तो कहेगा नहीं चाहिए। तात्पर्य क्या? जिस समय आप अपने विवेक का आदर करते हैं और इतने अंश में कि जितने अंश में आप जानते हैं मैं जीव हूं ये आप जानते नहीं मानते हैं, मैं ब्रह्म हूं ये आप जानते नहीं मानते हैं, मैं शिव हूं ये आप जानते नहीं मानते हैं, तो भाई मानने की बात तो पीछे कभी करेंगे, लेकिन जानने के आधार पर कोई भाई कोई बहन ये कह ही नहीं सकती कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं। बस यही कह सकते हैं कि यह नहीं हूं, यह नहीं हूं, यह नहीं हूं। निषेधात्मक ज्ञान है आपको अपने संबंध में, और प्रतीतात्मक ज्ञान है आपको जगत के संबंध में। ध्यान दीजिए, जगत के संबंध में आपका प्रतीतात्मक ज्ञान है। ये शब्द गलत बना, वो सही भगवान जाने। यानी प्रतीति है जगत की, ज्ञान जगत का भी नहीं है सरकार, है? और अपने संबंध में केवल इतना ज्ञान है कि यह का नाम मैं नहीं है, स्वीकृति का नाम मैं नहीं है। तो निषेधात्मक आप अपने संबंध में जानते हैं और प्रतीकात्मक आप जगत के संबंध में जानते हैं। तभी तो लोग कह देते हैं विचारशील कि हम कुछ नहीं जानते हैं, यही जानते हैं। ये जो बात कहते हैं वो असल पूछो तो उसका मूल यहाँ है कि जगत की प्रतीति है, प्राप्ति नहीं है, प्राप्ति नहीं है। और जिसकी प्राप्ति ही नहीं है उसका ज्ञान कैसा? उसका ज्ञान कैसा? तो है क्या
कि प्रतीति के आधार पर प्रवृत्ति है। अब वो जो प्रवृत्ति है उसके हैं दो रूप, अपने सुख के लिए कि दूसरों के हित के लिए। अगर अपने सुख के लिए प्रवृत्ति है तो जड़ता और दूसरों के हित के लिए प्रवृत्ति है तो चिन्मयता। तो कहने का तात्पर्य था कि प्रवृत्ति काल में वही मैं कि जिसके संबंध में आपने निषेधात्मक निर्णय किया था और ये कहा था कि भाई यह का नाम मैं नहीं है।